दानियेल की पुस्तक संख्या 155। दानियेल के अंतिम दर्शन का अनावरण। बुद्धिमान कुवारियों की समानांतर यात्रा।
हमने दानियेल के अंतिम दर्शन पर अपने विचार की शुरुआत दानियेल को परमेश्वर की अंतिम दिनों की वाचा प्रजा के प्रतीक के रूप में पहचानते हुए की है, और हमने पहले पद का अंतिम अध्याय के साथ संयोजन करके उन अंतिम दिनों के लोगों की भविष्यद्वाणीय विशेषताओं की पहचान करना आरंभ किया है, जिनका प्रतिनिधित्व बेलतशस्सर करता है। परमेश्वर की अंतिम दिनों की वाचा प्रजा प्रथम स्वर्गदूत के आंदोलन के मिलेराइटों का और तृतीय स्वर्गदूत के आंदोलन के 1,46,000 का प्रतिनिधित्व करती है। मिलेराइटों ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत को पूर्ण किया, और वो दृष्टांत अंतिम दिनों में अक्षरशः पुनरावृत्त होता है।
मुझे प्रायः 10 कुवारियों के दृष्टांत की ओर संकेत किया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका इस समय के लिए एक विशेष प्रयोग है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, ऑगस्ट 1890।
अंतिम दिनों के दोनों आंदोलनों का अनुभव एडवेंटवाद का अनुभव है।
मतेचिच की 10 कुमारियों का दृष्टांत भी एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को चित्रित करता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 393।
मिलराइट्स पहले स्वर्गदूत के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनके अनुभव का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया की कलीसिया द्वारा भी किया गया था। 1856 में फिलाडेल्फियो की मिलराइट आंदोलन लाओदिकियाई आंदोलन में परिवर्तित हो गया, और 1863 के विद्रोह में वो आगे चलकर लाओदिकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में परिवर्तित हो गया। 1,44,000 तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके अनुभव का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया की कलीसिया द्वारा भी किया गया था। 1988 में डेनियल की पुस्तक लाओदिकिया की सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लिए खोली गई, और 11 सितंबर 2001 को लाओदिकिया का एडवेंटिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ, और जुलाई 2023 में फिलाडेल्फिया आंदोलन की ओर लौटने का परिवर्तन आ गया। बेलतशस्सर या दानियेल अंतिम दिनों के फिलाडेल्फियाई आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो मिलरवादियों के फिलाडेल्फियाई आंदोलन को अक्षरशः दोहराता है। अंतिम दर्शन की पहली आयत उन अंतिम दिनों के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और अंतिम दर्शन की अंतिम गवाही को अंतिम दर्शन की पहली गवाही से मेल खाना चाहिए। दानियेल अध्याय 12 की शुद्धि प्रक्रिया ज्ञान की वृद्धि और उससे उत्पन्न होने वाले 2 वर्गों की पहचान कराती है। बेलतशस्सर अंतिम दिनों के बुद्धिमानों का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व है। दानियेल अध्याय 12 में कम से कम 5 भविष्यवाणी संबंधी सत्य है, जो मिलरवादी आंदोलन के आधार स्तंभ थे, जिन्हें तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में दोहराया जाना आवश्यक है। पहला शुद्धिकरण की वो प्रक्रिया है जो उपासकों के 2 वर्ग उत्पन्न करती है, और इस प्रकार 10 कुवारियों का दृष्टांत प्रारंभिक और अंतिम दोनों चरणों में पूरा करती है।
परंतु तू हे दानियेल, इन वचनों को बंद कर दे और पुस्तक पर मुहर लगा दे अंत समय तक। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ते फिरेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। और उसने कहा, तू अपने मार्ग पर चला जा दानियेल, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद और मुहर बंद कर दिए गए हैं। बहुतों को शुद्ध किया जाएगा, उजला किया जाएगा और परखा जाएगा, परंतु दुष्ट दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई नहीं समझेगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियेल 4:9-10।
बुद्धिमान और दुष्ट मूर्ख के बीच का भेद इस बात पर आधारित है कि वे अंत के समय पर खोली गई ज्ञान की वृद्धि को कैसे समझते हैं, मानसिक रूप से उसका विभाजन करते हैं, जो मिलराइट्स के लिए 1728 में और 1,44,000 के लिए 1941 में खुली थी। परमेश्वर के लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि एडवेंटवाद 10 कुंवारियों के दृष्टांत का अनुभव है, क्योंकि उस समझ के बिना वे ये समझने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे कि अंतिम पीढ़ी के लिए अंत का समय कब आया या वो संदेश क्या था जिसकी मुहर तब खोली गई थी। ये समझ न होने पर कि एडवेंटवादी अनुभव एक 3 चरणीय परख प्रक्रिया है, जो सत्य के क्रमिक विकास पर आधारित है और जो जीवन या मृत्यु के परिणाम तक ले जाती है, हर सेवेंडे एडवेंटिस्ट के उच्च बुलाहट को पहचानना असंभव है। बेलतशस्सर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो जानते हैं कि वे उस शुद्धिकरण प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं जिसे शुद्ध किए गए, उजले किए गए और परखे गए के रूप में दर्शाया गया है। वही तीन चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया विशेष रूप से पवित्र आत्मा के कार्य के रूप में पहचानी गई है।
फिर भी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम्हारे लिए ये लाभदायक है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सांत्वना दाता तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और जब वो आएगा तो वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। धर्म के विषय में, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में, क्योंकि इस संसार के प्रधान का न्याय किया जा चुका है। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए अभी बहुत सी बातें हैं, पर तुम अब उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारे सत्य में मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं बोलेगा, पर जो कुछ वो सुनेगा वही बोलेगा, और वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। यूहन्ना 16:7। देख,
बुद्धिमान कुवारियों को संपूर्ण सत्य में ले जाने में पवित्र आत्मा का कार्य। इसके लिए आवश्यक है कि वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में ठहराए, अर्थात ताड़ना दे या दोषी ठहराए। और यही वही तीन चरण हैं जो दानियल अध्याय 12 में किसी को या तो बुद्धिमान या मूर्ख कुवाड़े बनाते हैं। यीशु ने जिस संदेश की पहचान पवित्र आत्मा के कार्य के रूप में की है, वही तेल है जो दानियल 12 में बुद्धिमानों और दुष्टों के बीच का भेद प्रकट करता है। परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों को अपनी पीढ़ी के लिए होने वाली ज्ञान की वृद्धि को समझना चाहिए मीरा, और उस ज्ञान में ये पहचान भी शामिल है कि मत्ती अध्याय 25 के दृष्टांत में वे या तो मूर्ख कुवाड़िया है या बुद्धिमान कुवाड़िया।
जॉन को पवित्र दर्शन में ये बातें दिखाई गईं। उसने 5 बुद्धिमान कन्याओं द्वारा दर्शाया गया वो समूह देखा जिनके दीपक काट छान कर संवारे हुए और जल रहे थे, और वो आनंदित होकर पुकार उठा, यहाँ पवित्र जनों का धैर्य है, यहाँ वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु में विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से एक वाणी सुनी जो मुझसे कहती थी, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। हाँ, आत्मा कहता है कि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएं, और उनके काम उनके पीछे पीछे चलते हैं।
पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेश सुनने वालों में से बहुतों ने सोचा कि वे जीते जी स्वर्ग के बादलों में आते हुए मसीह को देखेंगे। यदि सत्य में विश्वास करने का दावा करने वाले सब ने बुद्धिमान कुवारियों के समान अपना भाग निभाया होता, तो ये संदेश अब तक हर जाति, कुल, भाषा और लोगों तक प्रचारित कर दिया गया होता। परंतु 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। सत्य का प्रचार तो 10 कुवारियों के द्वारा होना चाहिए था, पर केवल 5 ने वो आवश्यक तैयारी की थी जिससे वे उस समूह में सम्मिलित हो सकें जो उन्हें मिली हुई ज्योति में चल रहा था। तीसरी स्वर्गदूत का संदेश आवश्यक था, ये घोषणा की जानी थी। पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के प्रभाव में दूल्हे से मिलने निकले बहुतों ने तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को, जो संसार को दिया जाने वाला अंतिम परखने वाला संदेश है, अस्वीकार कर दिया।
इसी प्रकार का कार्य तब पूरा किया जाएगा जब वो दूसरा स्वर्गदूत, जो प्रकाशित वाक्य 18 में दर्शाया गया है, अपना संदेश देगा। पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेशों को दोहराने की आवश्यकता होगी। कलीसिया को ये आह्वान दिया जाएगा, हे मेरे लोगों, उससे बाहर निकल आओ ताकि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो। महान बाबुल गिर पड़ा है, और दुष्टात्माओं का निवास स्थान, हर एक अशुद्ध आत्मा का ठिकाना और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा बन गया है, क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु पी है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारियों ने उसकी विलासिताओं की प्रचुरता से धनवान हो गए हैं। हे मेरे लोगों, उससे बाहर निकल आओ ताकि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और तुम उसकी विपत्तियां न पाओ, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्मताओं को स्मरण किया है।
प्रकाशित वाक्य 18:2-12। इस अध्याय की प्रत्येक आयत लो और उसे ध्यान से पढ़ो, विशेषकर आखिरी दो, और तेरे भीतर दीपक का प्रकाश अब फिर कभी नहीं चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का स्वर तेरे भीतर अब फिर कभी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के बड़े लोग थे, क्योंकि तेरे जादू टोने से सब जातियां भ्रमित हुईं, और उसके भीतर भविष्यद्वक्ताओं का और पवित्र जनों का और पृथ्वी पर मारे गए सब का रक्त पाया गया।
10 कुमारियों का दृष्टांत स्वयं मसीह ने दिया था और उसके प्रत्येक विवरण का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। एक समय आएगा जब द्वार बंद कर दिया जाएगा। हमारा प्रतिनिधित्व या तो बुद्धिमान कुमारियों द्वारा या मूर्ख कुमारियों द्वारा होता है। हम अभी भेद नहीं कर सकते और न ही हमें ये कहने का अधिकार है कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। कुछ ऐसे भी हैं जो अधर्म करते हुए सत्य को थामे रहते हैं और ये बाहरी रूप से बुद्धिमानों के समान दिखाई देते हैं। मैनुस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 16:10-70।
एडवेंटिस्ट होने के नाते, जिन्हें शीश्र आने वाले रविवार के कानून के समय पुरुषों और स्त्रियों को बाबुल से बाहर बुलाना है, हम या तो बुद्धिमान अथवा मूर्ख कुवारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हैं। यूहन्ना ने जिस समूह को 5 बुद्धिमान कुवारियों द्वारा, जिनके दीपक ठीक किए हुए और जलते थे, दर्शाया देखा, जिन्हें उसने आगे पवित्र जनों का धैर्य रखने वाले तथा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और यीशु के विश्वास को रखने वाले के रूप में पहचाना। वही 144,000 हैं जिन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना, यीशु के विश्वास को धारण करना और ये जानना आवश्यक है कि वे मत्ती अध्याय 25 की दृष्टांत वाली कुवारियां हैं। उन्हें केवल ये समझना ही नहीं है कि वे या तो बुद्धिमान हैं या मूर्ख कुवारिया, बल्कि उन्हें दानियल द्वारा शुद्ध किए गए, उजले बनाए गए और परखे गए के रूप में दर्शाए गए अनुभव को भी दोहराना है।
उन्होंने मानो एक नया गीत सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के सामने गाया, और वो गीत उन 144,000 को छोड़ किसी ने नहीं सीखा जो पृथ्वी से छुड़ाए गए थे। ये वे हैं जिन्होंने स्त्रियों से अपने को अशुद्ध नहीं किया, क्योंकि ये कुंवारे हैं। ये वे हैं जो मेन्ने का जहां कहीं वो जाता है अनुसरण करते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं ताकि परमेश्वर और मेमने के लिए पहिलौठे फल हों, और उनके मुंह में कोई छल नहीं पाया गया, क्योंकि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हैं। प्रकाशित वाक्य 14:3।
दानियल के 12वें अध्याय में कम से कम 5 सत्य प्रस्तुत है जो प्रथम स्वर्गदूत के मिलेराइट आंदोलन से जुड़े सत्य हैं और जिन्हें 144,000 के आंदोलन द्वारा दोहराया जाएगा और अधिक पूर्ण रूप से समझा जाएगा। उनमें से एक सत्य 10 कुवारियों के दृष्टांत से संबंधित 3-चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया है। विलियम मिलर ने भविष्यद्वाणी के समय के संदर्भ में जो प्रथम सत्य समझा वो लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 का 7 समय था, और वो सत्य दानियल 12 में पहचाना गया है और वही मिलेराइट इतिहास का प्रथम सत्य है जिसका वहां उल्लेख किया गया है।
परंतु तू हे दानियल, इन वचनों को बंद कर और पुस्तक पर अंत समय तक मुहर लगा दे। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। तब मैंने दानियल ने देखा, और देखो वहां 2 और खड़े थे, एक नदी के तट के इस पार और दूसरा नदी के तट के उस पार, और उनमें से एक ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से जो नदी के जल के ऊपर था कहा, इन अद्भुत बातों के अंत तक कितना समय होगा। और मैंने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो नदी के जल के ऊपर था यह कहते सुना, जब उसने अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी अशपथ खाई जो सदा सर्वदा जीवित है कि ये एक काल, कालों और आधा काल तक रहेगा, और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को तितर बितर करने का काम पूरा कर लेगा तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी। मैंने सुना पर मैं समझ नहीं सका। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, अपने मार्ग पर चला जा, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद और मुहर बंद कर दिए गए हैं। बहुत से लोग शुद्ध किए जाएंगे, उजले बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई न समझेगा परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियल 12:4-10।
ये खंड इस बात से आरंभ होता है कि दानियल की पुस्तक अंत के समय तक के लिए मुहर बंद कर दी गई है, और ये खंड इस बात पर समाप्त होता है कि दानियल की पुस्तक अंत के समय तक के लिए मुहर बंद कर दी गई है। दानियल के वचनों की पहली और अंतिम मुहरबंदी के बीच जो सदा जीवित है का शब्द पूर्वक साक्ष्य ये था, यह एक काल, दो काल और आधा काल तक होगा, और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को सन तितर बितर कर चुका होगा तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी।
ये शब्द पूर्वक गवाही उसी ने दी जो जल के ऊपर था और मलमल के वस्त्र पहने हुए था। दानियल ने हिद्देकेल नदी के एक किनारे पर एक स्वर्गदूत और दूसरे किनारे पर दूसरा स्वर्गदूत देखा, और उन्हीं स्वर्गदूतों में से एक ने एक प्रश्न किया जिसका उत्तर जल के ऊपर स्थित उसी ने दिया। प्रश्न था, कब तक? ये दानियल अध्याय 8 के पद 13 में पूछे गए प्रश्न के वही पहले दो शब्द है।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए सुना, और दूसरे पवित्र जन ने उस विशेष पवित्र जन से जो बोल रहा था कहा, नित्य बलिदान और उजाड़ देने वाले अपराध के विषय में ये दर्शन कब तक रहेगा कि पवित्र स्थान और सेना दोनों पांव तले रौंदे जाए? और उसने मुझसे कहा, 2300 दिनों तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियल 8:13-14।
एक ही भविष्य सूचक संरचना दोनों वार्तालापों में मिलती है, सिवाय इसके कि अध्याय 8 में दानियल उलय नदी के किनारे है, न कि हिद्देकेल नदी के। अध्याय 8 में एक स्वर्गदूत संत ने उस विशिष्ट संत से जो बोल रहा था कहा, कब तक? That certain saint के रूप में अनुदित इब्रानी शब्द फाल मूनी है, जिसका अर्थ है अद्भुत गणक या रहस्यों का गणक। अध्याय 8 में यीशु अद्भुत गणक बोल रहे थे, और एक अन्य संत ने यीशु वही विशिष्ट संत से पूछा, कब तक? अध्याय 12 में हिद्दे के नदी के एक तट पर खड़े एक स्वर्गदूत ने जल पर खड़े उस जन से पूछा, कब तक? इन दोनों अंशों पर पंक्ति पर पंक्ति एक साथ विचार करना चाहिए। अध्याय 8 का पहला प्रश्न ये है, पवित्र स्थान और सेना को रोंदे जाने से संबंधित दर्शन कितने समय तक का है, जो पहले पैगनवाद और फिर पोपवाद के द्वारा पूरा किया जाता है। अध्याय 12 का प्रश्न है, इन आश्चर्यों के अंत तक कितना समय होगा? तब सन के वस्त्र पहने हुए और जल के ऊपर खड़े पलमोनी उस आश्चर्यजनक गणनाकर्ता ने शपथ खाकर उत्तर दिया, यह एक काल, कालों और आधे काल तक होगा, और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को तितर बितर करने का काम पूरा कर चुका होगा तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी।
उलाई और हिद्दे के लदियों के प्रश्न ये हैं, परमेश्वर की प्रजा के बिखराव का वो दर्शन कितने समय तक रहेगा जो मूर्ति पूजा और फिर पापसी के द्वारा जब वे पवित्र स्थान और सेना को रौंदते हैं पूरा होता है? इसका उत्तर यह है कि यह रौंदना 1798 में समाप्त होता है, जब पालमोनी द्वारा मिलराइट मंदिर की स्थापना का कार्य आरंभ होता है, और वो कार्य 46 वर्ष बाद 1814 में समाप्त होता है, जब पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाना था। 12वें अध्याय में दानियल ने वो संवाद सुना, परंतु मैं समझ न सका। दानियल ने समझने की इच्छा प्रकट की जो उसकी मसीह से की गई पूछताछ से व्यक्त हुई, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत क्या होगा? उसकी समझने की इच्छा की ये अभिव्यक्ति ज्ञानी कुवारियों की समझने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि पूरा संवाद उन दो उल्लेखों के बीच रखा गया था जिनमें दानियल की पुस्तक के अंत के समय तक मुहरबंद रहने की बात कही गई है। दानियल ने उस इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जो विलियम मिलर में 1798 में खोली गई सच्चाई को समझने के लिए उत्पन्न की गई थी, और पहली सच्चाई जिसे उसे पहचानने के लिए प्रेरित किया गया वो थी पवित्र स्थान और सेना का पद्दलन, पहले मूर्ति पूजा द्वारा और फिर पोप तंत्र द्वारा। उस काल में जब पवित्र लोगों की शक्ति लेव्य व्यवस्था 26:7 की पूर्ति में तितर बितर कर दी गई थी। सत्य को जानने की मिलर की इच्छा दानियल की इच्छा द्वारा दर्शाई गई है, परंतु मिलर की समझ अपूर्ण थी। दानियल मिलर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है,
और बेलतशस्सर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास उस विषय और दर्शन की पूर्ण समझ है। दानियल के 12वें अध्याय में मिलराइटों के अनुभव का हिस्सा रही कम से कम 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जो 144,000 के इतिहास में अपना समानांतर प्रतिरूप पाएंगी। एक ये कि उन्होंने 10 कुमारियों के दृष्टांत को उसकी 3 चरणीय परीक्षा प्रक्रिया सहित पूरा किया और ये भी समझा कि वे उस दृष्टांत की पूर्ति कर रहे थे, और दूसरा ये कि वे लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7-12 की आधारशिला को समझते हैं। हम अपने अगले लेख में इस अध्ययन को जारी रखेंगे।
तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने निकलीं। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थीं। जो मूर्ख थीं वे अपने दीपक तो ले गईं पर अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ अपने पात्रों में तेल भी ले लिया। जब दूल्हा देर लगाता रहा तो सबने ओंघ लिया और सो गईं, और आधी रात को पुकार हुई, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने निकलो। तब वे सब कुमारियां उठीं और अपने दीपकों की बातियां ठीक कीं। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें अपने तेल में से दे दो क्योंकि हमारे दीपक बुझ गए हैं। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं, कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त न रह जाए, बल्कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए खरीद लो। जब वे खरीदने गईं तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह में भीतर चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। बाद में वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगीं, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल। परंतु उसने उत्तर देकर कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र आता है। हम आज अत्यंत संकटपूर्ण समय में जी रहे हैं, और हम में से किसी को भी मसीह के आगमन के लिए तैयारी करने में देर नहीं करनी चाहिए। कोई भी मूर्ख कुंवारियों का अनुकरण न करे और ये न समझे कि उस समय ठहरने के लिए आवश्यक चरित्र तैयारी प्राप्त किए बिना संकट आने तक प्रतीक्षा करना सुरक्षित है। जब मेहमानों को बुलाया और परखा जाएगा, तब मसीह की धार्मिकता की खोज करना बहुत देर हो जाएगी। अब मसीह की धार्मिकता को धारण करने का समय है। वही विवाह का वस्त्र जो आपको मेमने के विवाह भोज में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। दृष्टांत में मूर्ख कुंवारियों तेल के लिए गिड़गिड़ाती हुई दिखाई गई हैं और अपने कहने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाती। ये उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने संकट के समय ठहरने योग्य चरित्र विकसित करके स्वयं को तैयार नहीं किया है। मानो वे अपने पड़ोसियों के पास जाकर कहें, अपना चरित्र मुझे दे दो, नहीं तो मैं नाश हो जाऊंगा। जो बुद्धिमान थीं वे मूर्ख खुआरियों के टिमटिमाते दियों को अपना तेल नहीं दे सकती थीं। चरित्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ये खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, इसे अर्जित करना पड़ता है। प्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह के समय में धर्मी चरित्र प्राप्त करने का अवसर दिया है, परंतु उसने ऐसा कोई उपाय नहीं ठहराया है कि एक मनुष्य वो चरित्र दूसरे को दे सके जिसे उसने कठोर अनुभवों से गुजरकर, महान शिक्षक से पाठ सीखकर, परीक्षाओं में धैर्य प्रकट करना सीखकर और ऐसा विश्वास अभ्यास करके विकसित किया है कि असंभवताओं के पर्वत भी हट जाएं। प्रेम की सुगंध बांटना असंभव है। किसी दूसरे को कोमलता, कुशलता और लगन देना असंभव है। एक मानव हृदय का दूसरे में परमेश्वर और मानवता के प्रति प्रेम उंडेल देना असंभव है। परंतु वो दिन आ रहा है और वो हमारे निकट ही है, जब चरित्र के प्रत्येक पक्ष विशेष प्रलोभनों द्वारा प्रकट हो जाएगा, जो सिद्धांत के प्रति सच्चे बने रहते हैं, जो अंत तक विश्वास बनाए रखते हैं, वही वे होंगे जिन्होंने अपने परीक्षा काल के पहले के समयों में परीक्षा और कसूटी के अधीन सत्यनिष्ठ सिद्ध होकर मसीह के स्वरूप आ रहा है। वे वही होंगे जिन्होंने मसीह से घनिष्ठ संगति विकसित की है, जो उसकी बुद्धि और अनुग्रह के द्वारा दिव्य स्वभाव के सहभागी बने हैं। परंतु कोई मनुष्य दूसरे को हृदय समर्पण और मन के उदात्त गुण दे नहीं सकता, और न ही उसकी कमियों की पूर्ति नैतिक सामर्थ्य से कर सकता है। हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हम लोगों के सामने मसीह सदृश उदाहरण रखें, जिससे उन पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वे उस धार्मिकता के लिए मसीह के पास जाएं, जिसके बिना वे न्याय में ठहर नहीं तक। मनुष्यों को प्रार्थना पूर्वक चरित्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना चाहिए और अपने चरित्र को दिव्य आदर्श के अनुसार ढालना चाहिए। द यूथ इंस्ट्रक्टर, 16 जनवरी 1896।